इसलिए कोई साधु बनने नहीं चाहता सुबह,
इसलिए सामान्य हो गया आचार्य और उपाध्याय तो द्वादशांग का पाठी होता
है,
गुरुओं को पढ़ाने वाला है, खुदय में कठिन आज होता है मुनियों का पढ़ाने उपाध्याय कठिन। 12 वर्ष तक जिसने अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ा, स्वसमय और परसमय, समय सार की जैसी व्याख्या करता हूँ वैसे ही कुरान की आयतों की व्याख्या करते जानता है, वो उपाध्याय। स्वसमय परसमय दूसरे षट दर्शन का ज्ञान जिसको, कोई कहीं से एग्जिस्ट ले
दूसरे ग्रंथों का,
सब ग्रंथों का पारंगत होता है, कोई अगर शास्त्रार्थ के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, तो फौरन सब ग्रंथों के बारे में स्वसमय परसमय भी जानते स्पष्ट दिखता है, मैं स्वसमय को जानता हूँ परसमय को जानता हूँ को भी जानता हूँ, क्योंकि पिछले तो सब उसी तीर्थंकर की ध्वनि से 363 मत के थे, वो कहाँ से आए हैं ऋषभ देव की ध्वनि से आए हैं,
363
उन्हीं की वाणी को नहीं समझने की वजह से एक एक चीज को लेके भाग गए, अलग अलग मत बना लिए थोड़े थोड़े, इस समय अध्यक्ष के संघ में नहीं है कोई, बाकी है दूसरा काम करें प्रश्न उत्तर नहीं तो ये चर्चा में उलझ जाएंगे। अपन लोग लिख रहे थे कि क्या होता है जब तीसरा काल आता है, तो अब तीसरे काल में भोग भूमि तो खत्म होना है, तो भोग भूमि कैसे खत्म होने लगेगी तो क्या स्थिति बनेगी, फिर कैसे कैसे लोगों को कर्म भूमि की तरफ ले जाएंगे, कैसे सिखाएंगे, तो वो भोग भूमि के समाप्त और कर्म भूमि के प्रारंभ होने के बीच में 14 कुलकर जिनको मनु भी कहते हैं, इन्हीं को मनु कहते हैं, इन्हीं को कुलकर कहते हैं, ये 14 कुलकर फिर धीरे धीरे करके और पूरी जानकारी लोगों को देते हैं। तो पहले नंबर के जो कुलकर हैं, इन 14 कुलकरों का काम लिख लिया है, ये क्या बताते हैं लोगों को तीसरे काल के अंत में, तीसरे काल का थोड़ा सा समय रह गया कुछ कम, पल का 8वां काल टोटल था एक पल, मान लीजिए 100 वर्ष थे तो उसके 8 पोर्शन कर दीजिए और उसमें से एक पार्ट रह गया, मतलब श्रवण कितना परसेंटेज निकल गया, मतलब लगभग 80% लगभग निकल गया है ना, 80% निकल गया, 20% काल रह गया, इतना काल जब शेष रह जाता है तब कुलकर पैदा होते हैं, कुलकर पहला कुलकर क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, लोगों को किस तरह बताएगा और क्या स्थिति बनेगी, ये अपन आज इसमें लिख लें, क्रमशः 14 कुलकर होते हैं, ये लिख लिया था अच्छा 7-7 दिन व्यतीत में कुछ भी नहीं लिखा,
7-7
दिन उत्पन्न होते हैं वे 14 होते हैं, या उधर लिख देते कुलकर 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं, उसी में लिख दो गाइस सेंटेंस का, क्रमशः 14 कुलकर फिर उसके बाद जो है अपने को क्लियर हो जाएगा कि चौथा काल कैसे आ जाता है तीसरे के समाप्ति तक, ये क्रम क्रम से आएगा, जैसे पहले नंबर के देखो प्रतिश्रुति, उनका नाम था प्रतिश्रुति पहले कुलकर, तो इनने क्या किया, तो कहते हैं सूर्य चंद्र दर्शन से प्रजा भयभीत होने लगी, क्योंकि पहली बार प्रजा को ऐसा क्यों हुआ, पहले समझ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो तेजांग नाम के वृक्ष कल्प वृक्ष वे प्रकाश देते थे, अब वे उनका प्रकाश हो गया धीमा, तो उनका प्रकाश धीमा हो गया तो सूर्य और चंद्र दिखने लगे, तो लोग भयभीत हुए, तो उनको समझाया, उनको परिचय दिया कि सूर्य का मान ये है, चंद्रमा का मान ये है, तो प्रतिश्रुति जिन्होंने सबसे पहले लोगों को जो है इस बात हमेशा से वो तो हमेशा रहते हैं, लेकिन और कोई लाइटेड चीज हो जाए उससे भी ज्यादा तो फिर वो नहीं दिखेंगे, उसमें भी नहीं दिखेंगे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, जैसे 0 वाट का बल्ब जल रहा हो और बड़ा भारी 1000 का जल रहा हो तो 0 की क्या एग्जिस्टेंस है, इसी तरह तो जब वो डिम होने लगे कल वृक्ष तो फिर ये लाइटेड होने लगे तो लोग चौंके थे क्या हो रहा है, ये कौन सी चीज दिख रही है इतनी चमकदार, तो फिर उनको समझाया, तो प्रतिश्रुति नंबर 1 प्रतिश्रुति सूर्य चंद्र दर्शन से प्रजा भयभीत हुई, क्योंकि तेजांग नाम के कल्प वृक्ष की कमी हो गई, क्योंकि तेजांग नाम के कल्प वृक्षों की कमी हुई, प्रथम कुलकर ने सूर्य चंद्र का परिचय देकर प्रजा का भय दूर किया, ये सबसे पहला काम है। फिर नंबर टू सन्मति, दूसरे कुलकर हुए सन्मति। इनके टाइम में पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि कल्प वृक्ष समाप्ति हो गए तो अंधेरा होने लगा। अभी तो अंधेरा नहीं दिखता था, सूर्य चंद्र पर दिखते थे, अब अंधेरा होने लगा, तारों का तारे भी दिखने लगे, तो उन सबका परिचय देकर के लोगों का भय दूर किया, ये इनने काम किया। तो दूसरा देखे सन्मति, इनका क्या काम रहा, तेजांग कल्प वृक्ष का लोभ, अंधकार और तारों का तेजांग कल्प वृक्ष का लोभ समाप्ति, अंधकार और तारों का दर्शन, उनका परिचय देकर भय दूर करना। हम शॉर्ट में लिख पाए पूरा सेंटेंस न करके, अंधकार और तारों का दर्शन तो उनका परिचय देकर भय दूर करना, मतलब अंधकार और तारे का परिचय दे दिया क्या अंधेरा क्या है। ये सन्मति नाम के कुलकर हो गए। नंबर तीन क्षेमंकर, अब जो साधक है क्षेमंकर, मेरा क्षा का उच्चारण क्षेमंकर, अपन उसको आप लोग अपनी ऐसे क्षेमंकर बोलेंगे, मेरे से वो क्षेमंकर नहीं क्षेमंकर, काशा योग क्षा बनता है, क्षमा क्षेमंकर। तो इन्होंने क्षेम मतलब, क्षेम मतलब होता है कुशल, कुशल क्षेम कहते हैं। तो इन्होंने कैसे जो जो जंतु रहते थे, जीव जंतु साथ में, पशु भी रहते थे सब साथ में, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि पशुओं में क्रूरता बिल्कुल नहीं थी, सब साथ में रहते थे। अब इनके टाइम तक पहुंचते पहुंचते पशुओं में क्रूरता आना शुरू, पहले सिंह भी बड़े आसानी से गाय के साथ रह लेता था, आदमी के साथ रह लेता था, अब क्या हुआ कि सिंह जो है थोड़ा सा क्रूर होने लगा। तो फिर जो है जंतुओं में क्रूरता का दर्शन, उनसे बचने की शिक्षा और पालन की शिक्षा, ये भी क्षेमंकर ने मतलब उनको बचा, जंतुओं में क्रूरता का दर्शन, उनसे बचने की शिक्षा, जंतुओं में क्रूरता का दर्शन तो ये होने लगा, इसलिए उनसे बचने की शिक्षा और उनके पालन की शिक्षा, दोनों काम ये क्षेमंकर। फिर नंबर चार क्षेमधर, क्षेमधर ये क्षेमंकर ना होके क्षेमधर, मैंने उसको क्षेम कुशलता को धारण करने का, धारण करना धर। अब क्या हुआ कि जंतु क्रूर तो हो ही गए थे, अब उन्होंने जो है मनुष्यों का भक्षण करना शुरू कर दिया, यहां से शुरुआत हुई है मांसाहार होना पशुओं का, अन्यथा पशु मांसाहारी नहीं थे, ये अपन को इससे मालूम पड़ता। इस काल में जो व्याघ्र आदि है वो मनुष्य को खाने लगे, तो उनकी रक्षा के लिए दंड इत्यादि का प्रयोग सिखाया कि लाठी से इस तरह उनका बचाव कर, उनको भगा दो लाठी से दिमाग, तो लाठी अकेले से भग जाते हैं, उनको इतना ही भय हो जाता पशुओं को। ये तो क्या लिखेंगे, व्याघ्र आदि से मनुष्य का भक्षण खाए जाने लगे, व्याघ्र आदि से मनुष्य का भक्षण, रक्षार्थ दंड प्रयोग की शिक्षा, रक्षा दंड व्याघ्र आदि से मनुष्य रक्षा के लिए दंड का प्रयोग, दंड के प्रयोग की शिक्षा ऐसा कहते, क्योंकि इनने सब शिक्षा दी है, चौदह कुलकर शिक्षा देने के लिए उत्पन्न होते हैं। फिर नंबर पांच सीमंकर, सीमंकर अब यहां से झगड़ा हुआ लोगों के बीच, क्या हुआ
सीमंकर,
सीमाओं का निर्धारण करने वाले सीमंकर, अभी कभी क्लियर हो जाएगा, लिखेंगे अभी उसका
नाम,
क्या हुआ कि अब कल्प वृक्षों की कमी होने लगी, कल्प वृक्ष पहले तो बहुत सारे थे तो किसी को चिंता नहीं थी कि हम जिससे ऐसे ले लेंगे, अब जब कम होने लगे तो नहीं जी हमारा हमारा जी हमारा, हम इसमें से नहीं ले सकते तो हमारा इसमें जैसे जिस तरह, तो वो क्या हुआ कल्प वृक्ष की कमी होने से उसके स्वामित्व को लेकर के परस्पर कलह होने लगी, तो कल्प वृक्षों की सीमा का निर्धारण कर दिया कि इतने स्तर पर इतने स्तर पर, ये कलह शुरू हुई लोगों ने, डिवाइडेशन शुरू हुई चीजों को लेकर। अच्छा ये सीमंकर कल्प वृक्ष की कमी से स्वामित्व पर को लेकर परस्पर कलह होना, फल वृक्ष की कमी होने से स्वामित्व को लेकर परस्पर कलह होना। इस तपकल वृक्षों की सीमा का विभाजन किया गया, तपकल वृक्षों की सीमा का विभाजन कर दिया, विभाजन की शिक्षा कल वृक्षों के विभाजन की शिक्षा इन्होंने दी सी मंगल से। फिर नंबर पांच की छह, फिर सी मंधर अब तो खुद ही की सीमा बनाना, स्वामित्व की सीमा बना दी। अभी तो हमने कल वृक्षों को डिवाइड कर दिया था कि एरिया के, अब कल वृक्ष के स्वामी हो गए तुम, अब तुम्हारी एक ही वृक्ष की सीमा है, इतने सबका यूज नहीं कर सकते, तुम्हारा पर्टिकुलर हो गया। अभी तो 10 में से तुम इतने लोग 50 लोग इन 10 का उपयोग कर लोगे, लेकिन अब तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का एक वृक्ष या कि आधा वृक्ष या दो लोगों का मिलकर एक पे स्वामी, ये सीमंधर कलह में वृद्धि। कलह में वृद्धि होने पर वृक्षों को चिन्हित करके उनके स्वामित्व के विभाजन की शिक्षा दे दी। कलह में वृद्धि होने से वृक्षों को चिन्हित करके उनमें मार्क कर दिया, चिन्हित करके उनके स्वामित्व के विभाजन की शिक्षा देना, ये इनका काम छठवे का काम है। नंबर सात, सातवें कुल कर आए, चिन्हित करके उनके स्वामित्व का विभाजन करने की शिक्षा। फिर नंबर सात विमल वाहन, ये सातवें कुल कर आए, इन्होंने क्या किया, लोगों को अभी तक तो ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लोग इजीली पांव पैदल ट्रेवल करते थे, अब जो है लोगों को गमना गमन में बाधा होने लगी, शक्ति कम हो गई, तो फिर अश्व और गज का उपयोग सिखाया, इनका सवारी कर गमना गमन में बाधा का अनुभव होने पर, गमना गमन में बाधा का अनुभव होने पर हाथी और घोड़े का उपयोग सिखाया, हाथी और घोड़े का उपयोग सिखाया। नंबर आठ ये लिख लिया, चक्षुष्मान नाम ही होगा, चक्षुष्मान अर्थात दिखाने वाले, चक्षुष्मान धनवान बुद्धिमान चक्षुष्मान ऐसे बन गया। तो हुआ क्या, अब अभी तक तो जो थे वो भूमि के मनुष्य, तो उनका मरण होते ही साथ उनके पुत्र उत्पन्न होते थे, वे पुत्र का मुख ही नहीं देखते थे और मरण हो जाता था उनका, जो 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 युगल पैदा होते थे वो अपने संतान को देखते ही नहीं थे, उसके पहले मरण हो जाता, लेकिन अब संतान का मुख देख करके मरण को प्राप्त हुए, तो बड़ा ये कौन है, ये छोटे छोटे से जीव जंतु से मनुष्य क्या करके, तो उनको देखने से उनको भय उत्पन्न हुआ, तो संतान का परिचय देने वाले ये कुल कर लिए, संतान का मुख देखकर भय होने देखकर भय होने से संतान का परिचय देकर भय मुक्त करना, ये इनका काम। अब इसके आगे क्या स्थिति बनेगी कि अभी तक तो संतान मुख दिख गया, अब उसके बाद मरण हो गया, तो
उनका पालन पोषण,
हाँ अब सिखाएंगे यशस्वी, नंबर 9 खुलकर 9 नंबर के यशस्वी बालक का नाम रखने तक बालक के नामकरण की शिक्षा है, ऐसा दे बालक के नामकरण की शिक्षा दे, क्योंकि बालक के नामकरण तक ये लोग जीवित रहने लगे, अभी तो जल्दी मर जाते थे, मुख देख के मर जाते थे, अब थोड़े बड़े होने तक जीवित रहे, तो उनका नामकरण की शिक्षा है, बालक का नाम रखने तक जीने लगे, इसलिए नामकरण की शिक्षा यशस्वी। नंबर 10 अभिचंद्र असमंता चंद्र रहती, ऐसा आएगा सब तरफ से विकास, बालक का बोलना खेलना देखने में आने लगा, तब बोलना खेलना सिखाने की शिक्षा इन्होंने दी, बालक को बोलना खेलना सिखाने की शिक्षा अभी चंद्र ने दी, दसवें कुलकर तक आकर के ये स्थिति बन गई। नंबर 11, बालक के खेलना बोलने खेलने सिखाने की शिक्षा दी। फिर 11वें नंबर चंद्राव, चंद्र के समान आभा वाले चंद्राव। तो इस इन्होंने क्या किया कि पुत्र के कलह के साथ साथ लंबे समय तक जीने लगे। ये तो सामान्य सी बात, लेकिन इस समय क्या हुआ, अभी तक शीतल वायु और गर्म वायु इन सबका कोई एहसास ही नहीं होता था, इतनी शक्ति थी। लेकिन अब शीतल वायु का चलना शुरू हुआ और शीत, तो फिर सूर्य की किरणों से शीत का निवारण करने की शिक्षा देने वाले ये चंद्रा, इन्होंने कैसे करो, अभी आग नहीं जलानी शुरू हुई है, अभी सूर्य की किरणों से ही गर्मी प्राप्त कर लेना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे प्रलय के बाद अपने वर्णन ऐसे धीरे धीरे शुरू करना, वही शीत वायु से बचने के लिए सूर्य किरणों के उपयोग की शिक्षा देने वाले ये चंद्रा। नंबर 12, मरुदेव शीत वायु से बचने के लिए सूर्य किरणों के प्रयोग की शिक्षा चंद्राव ने दी। फिर मरुदेव नंबर 12, अब क्या हुआ कि अभी तक ना बरसते बादल देखे थे, ना बादल ही नहीं देखे थे, वर्षा नहीं देखी थी, बिजली कड़कते नहीं देखी थी, नदी और पहाड़ का कोई एहसास ही नहीं था। तो फिर जो है इन सब का एहसास होने लगा, तो मेघ वर्षा बिजली नदी पर्वत के दिखने से नौका और छाते आदि का प्रयोग और सीढ़ियों का प्रयोग सिखाया, किस तरह सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ो, इस तरह नौका बना लो, इस तरह छाता बना लो, ये सब सिखाया। ये सब है मेघ वर्षा बिजली नदी पर्वत आदि के दर्शन के दिखाई पड़ने पर, के दिखने लगने से या दिखाई पड़ने से नौका छाते पीढ़ी आदि के प्रयोग की शिक्षा दी। मेघ वर्षा बिजली नदी पर्वत आदि के दिखने से नौका छाता और सीढ़ी के प्रयोग की शिक्षा दी। नंबर 13 हो गया प्रसेंजित। अब जो बालक के साथ में अभी तक जो है उस तरह का नहीं था, बालक के साथ में एक कवच पूरा जाल दबता हुआ था, बालक जब जन्म लेता है तो उसका अभी तक तो ऐसे ही हो जाता था बालक, लेकिन अब जो है वो कवच में लपेट करके आने लगा, जरायु ऊपर जो है तो उसकी थैली, तो उसको कैसे अलग करें उसका उपाय बताया इन्होंने प्रसेंजित 13वें कुलकर में आकर के। तो बालक के साथ जरायु की उत्पत्ति होने से उसे दूर करने का उपाय होता है, इसलिए इनको 13वें नंबर प्रसेंजित प्रसूति पर विजय प्राप्त करने वाले सीधा सीधा ये है उनको सिखाया, बालक के साथ जरायु की उत्पत्ति होने पर उसे दूर करने का उपाय होता है। मतलब इतना पहले नहीं था, इस तरह डेवलप धीरे धीरे हुआ है। नंबर 14, नाभि राय, ये आखिरी कुलकर्म हुए नाभि राय, ऋषभ देव के पिता नाभि राय, इनने क्या किया, तो जो बालक उत्पन्न होता था तो उसकी नाभि नाल बहुत लंबी होने लगी, तो उसे काटने का उपाय होता है, ये इसलिए नाभि राय के नाम से एक चीज सिखाना पड़ी है कैसे आ गया। नाभि नाल अत्यंत लंबा होने लगा, उसे काटने का उपाय बताया एक चीज। दूसरी, दो काम एक साथ हुए, एक काम ये, दूसरा कल्प वृक्ष का अभाव होने से औषधि धान फलों की उत्पत्ति उनकी पहचान, कल्प वृक्ष का अभाव होने से पहले तो कल्प वृक्ष सब मिल जाता है, अब कल्प वृक्ष का अभाव हो गया तो कहाँ से औषधि लाएं, कहाँ से खाने की चीजें लाएं, तो औषधि धान फलों की उत्पत्ति कैसे करें, फलों की उत्पत्ति उनकी पहचान उपयोग और दूध दोहने और उसके प्रयोग की शिक्षा दी, ये नाभि राय। ये चीज मिल गई इसमें कि
यहाँ से शुरू, इस समय से शुरू हुआ दूध दुहना और पीने की प्रक्रिया, उसके पहले नहीं था उपयोग में। कल्पवृक्ष मतलब उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता था, धीरे धीरे कम हो रहे थे, पर थे तो 14 महीने आकर के पूरे ही खत्म हो गए, कुछ नहीं मिलता। पहले तो तेजांग नाम के कम हुए, ऐसे करके धीरे धीरे कम होते गए, ये सब चीजें कम होती गई। फिर जाकर के अब सब खाने पीने कल्पवृक्ष से मिलता था, खाने पीने वाले वृक्ष चले गए, सभी चले खत्म हो गए। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, ये कभी लिखवा दूंगा, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, उसमें से ये तो कल्पवृक्ष का अभाव, औषधि, धन धान्य, वो धान फलों की उत्पत्ति, उनकी पहचान, उपयोग सिखाया, दूध के प्रयोग की शिक्षा दी। फिर जब कोई ऋषभ नाभि राय से पूछता था, तो अब नाभि राय, ये सब लिखा जरूर है कि नाभि राय ने बताया, पर एक्चुअली ये सारी शिक्षा जो है वो कह देते थे कि ऋषभ देव से पूछो, तो इसलिए ऋषभ देव ने ही असी मसी कृषि आदि षट कर्मों की शिक्षा दी, और यहाँ से जो है कर्म भूमि शुरू हुई। इसके बाद लिख ले अपन, इनको 15वां कुलकर माना है, एक्चुअली 15वें कुलकर नहीं होते, 14 ही कुलकर होते हैं, पर ऋषभ देव को भी कुलकर माना है, पहले प्रजापति थे आदि ब्रह्मा जिसको बन रहे। उसको बार बार मत कर क्योंकि डिस्टर्ब होता है। अब एक जो प्रक्रिया है सही वो अपन समझें, ये सब चौथे काल की शुरुआत में होगा, जो तीसरे काल का अंत, ये तो उन नवसर्जन की वजह से हो गया, वो अपन अलग लिखेंगे कि उन नवसर्जन में क्या क्या विपरीतताएं होती हैं, तब क्लियर होगा देखा। तो ऋषभ देव कृषि आदि षट कर्म की शिक्षा दी, बस यहाँ से जो है ये चौथा काल शुरू हो गया, ये तीसरे काल का अंत, इस तरह तीसरे काल। अब नंबर चौथा काल आप देखें, तो तीन कालों का अंत हो गया, चौथा काल दुखमा सुखमा। कर्म भूमि को कहेंगे कर्म भूमि, अभी तक भोग भूमि थी, अब वही कर्म भूमि है। शलाका पुरुष महापुरुष की उत्पत्ति, शलाका पुरुष महापुरुष की उत्पत्ति,
शलाका पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर
है? शलाका पुरुष विशेष कहना चाहिए प्रसिद्ध लोग हैं, और जिन्होंने उन प्रसिद्ध लोगों को उत्पन्न किया या उनके साथ उत्पन्न हुए वो महापुरुष के, जैसे तीर्थंकर शलाका पुरुष, उनके माता पिता महापुरुष, शलाका पुरुष महापुरुष की उत्पत्ति। 525 धनुष की ऊंचाई मैक्सिमम, पहले जो 2000 की थी ना तीसरे काल में, वो घट करके 525 हो गई मैक्सिमम, इतनी ऊंचाई रह गई, ये कर्मभूमि आ गई। फिर पांचवा काल, ये तो इतना ही है इसमें, सुखमा दुखमा काल, पांचवा दुखमा काल, इसमें क्या होगा, इसमें सब उपद्रव होगा, बहुत कमी हो जाएगी पांचवें काल में। चौथे काल में क्या होगा, 120 वर्ष की आयु मैक्सिमम, ऊंचाई 7-8 मैक्सिमम, देख रहे हैं अपन 10.5 फीट से ऊंचा कोई नहीं है, शुरुआत में थे भगवान महावीर स्वामी 10.5 फीट के, उससे ऊंचा कोई नहीं, तो 120 वर्ष की आयु मैक्सिमम, ये 130-140 वाले लोग एक्सेप्शन है, 120 मैक्सिमम, ऊंचाई 7-8। पंचम काल में क्या क्या होगा, श्रुत का विच्छेद, आदम ज्ञान नष्ट हो जाएगा, श्रुत का विच्छेद। अंतिम राजा चंद्रगुप्त, उनके बाद कोई राजा दीक्षा नहीं लेंगे, पहले राजा लोग दीक्षा लेते थे, बस आखिरी राजा है चंद्रगुप्त, उसके बाद किसी राजा ने दीक्षा नहीं ली, तो इसमें कोई राजा दीक्षा नहीं लेंगे पंचम काल। अंतिम राजा चंद्रगुप्त को छोड़कर कोई राजा दीक्षा नहीं लेंगे, राजवंश अन्यायी हो जाएंगे, पहले से डिक्लेयर किए सर राजवंश अन्यायी हो जाएंगे, प्रत्येक 1000 वर्ष बाद कल्कि अर्थात धर्मद्रोही राजा उत्पन्न होगा, राजवंश नई हो जाएंगे प्रत्येक 1000 वर्ष बाद, इस पंचम काल में प्रत्येक 1000 वर्ष बाद, भगवान महावीर के निर्माण 1000 वर्ष बाद, फिर उसके 1000, फिर 1000, ऐसे 21000 वर्ष तक, 1000 वर्ष बाद कल्कि ब्रैकेट में लिखने धर्मद्रोही राजा, और 500 वर्ष बाद उपकल्कि, वो भी धर्मद्रोही, वो थोड़ा कमजोर रहेगा, तनिक उपद्रव रहेगा, 500 वर्ष बाद उपकल्कि उत्पन्न होंगे, कल्कि राजा मुनियों के आहार पर भी शुल्क लगाएगा, कल्कि राजा मुनियों के आहार पर भी शुल्क मांगेगा, लगाएगा मांगेगा। तब अंतराय मानकर मुनि लौट जाएंगे, तब अंतराय मानकर मुनि लौट जाएंगे, उन्हें अवधि ज्ञान हो जाएगा। वे संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करेंगे, वे संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करेंगे और असुर देव आकर धर्मद्रोही राजा को मार देगा, असुर देव आकर धर्मद्रोही राजा को मार देगा। उसका पुत्र पुनः धर्म को स्थापित करेगा, धर्मद्रोही राजा यानी कल्कि को मार देगा, धर्मद्रोही राजा को मार देगा और उसका पुत्र यानी धर्मद्रोही राजा का जो कल्कि था उसका पुत्र फिर धर्म का प्रचार करेगा। तरह की स्थिति बनी। अंत में नाम तक लिखे हैं कि कौन कौन बचेंगे। अंत में वीरांगन मुनि सर्वश्री हारी का, वीरांगन मुनि सर्वश्री हारी का, अग्निदत्त श्रावक और पंकुश्री श्रावी का, ये चार ही बचेंगे। सर्वश्री हारी का, अग्निदत्त श्रावक और पंगुश्री शादी का, ये चार ही बचेंगे। इनकी समाप्ति पर पंचम काल समाप्त हो जाएगा, अग्नि नष्ट हो जाएगी। इनकी समाप्ति पर पंचम काल समाप्त हो जाएगा, अग्नि भी नष्ट हो जाएगी। कल्कि मरकर तीसरे नरक में जाएंगे। देख तो रहे हैं अपन,
अग्नि भी समाप्त हो जाएगी और
कल्कि राजा मर करके तीसरे नरक तक जाएंगे। ये हो गया पांचवा काल, छठा काल आ गया, अभी आया नहीं है, आया दुखमा दुखमा अभी पंचम चल रहा है। देख रहे हैं अपन धीरे धीरे कितना, 21 होंगे, एक 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 हजार साल में होगा,
1000
नहीं वैसा, ये अंत में लिखा था मैंने, इसलिए लिखा है अंत में, अंत में वीरांगन मुनि ये होंगे 21वें के समय, ऐसा क्लियर समझ लेना उसको। अंत में लिखा दो हो चुके औरंगजेब क्या था, वही तो थे 15वीं शताब्दी से सब मूर्तियां भंग कर दी, धर्म का नाश कर दिया, फिर उन्हीं के पुत्रों ने स्थापना करी,
स्थापित किया
लिखा ही हुआ, परंपरा थी ना, वही तो पुत्र मतलब पुत्राधिकारी एक तरह से। दुखमा 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 लिखो जल्दी से, छक्का काल पूरा हमारे टाइम ऊंचाई, इसमें क्या होगा ऊंचाई 3-3.5 हाथ मैक्सिमम, ऊंचाई 3-3.5 हाथ मैक्सिमम और घटते घटते एक हाथ रह जाएगी आपके। आयु 20 वर्ष, आयु 20 वर्ष, अपन देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो गई, 60 वर्ष की रहेगी एवरेज आयु, ये एवरेज 20 वर्ष की तरह जाएगा। ऊंचाई 3-3.5 हाथ, आयु 20 वर्ष। आहार क्या करेंगे, तो कहते आहार में कंदमूल मछली आदि का भक्षण, बस सिर्फ और कुछ नहीं खाएंगे, अग्नि नहीं रहेगी तो क्या पकाएंगे, क्या कंदमूल खाएंगे, मछली आदि का भक्षण करेंगे। नग्न वन में विचरण, पशुवत आचरण, नग्न वन में विचरण, वो स्थिति आ गई, पशुवत आचरण, क्रूर अंधे बहरे गूंगे दीन दरिद्र बंदर जैसे रूप वाले, नहीं लिख रहा है, पशुवत आचरण, क्रूर अंधे बहरे गूंगे दीन दरिद्र, ये आ गया बंदर जैसे रूप वाले, ये रूप है एक्चुअली, बंदर नहीं है, जो कहते हैं ना कि डार्विन ने कहा कि बंदर से हम डेवलप हुए, हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदर जैसे रूप वाले थे इसलिए लिखा हुआ कि बंदर के रूप वाले। स्वजन विहीन कोई फेम भी नहीं, कोई अपना कहने वाला नहीं, स्वजन भी नहीं, व्याधिग्रस्त नरक और तिरंत से निकल कर आएंगे और वहीं भी जाएंगे। नरक और तिरंत से आकर के मनुष्य बनेंगे और फिर मर करके मनुष्य से छोड़ेंगे। 49 दिन शेष रहने पर प्रलय, लास्ट में 49 दिन शेष, 39 और रामपाल 49 दिन शेष रहने पर प्रलय। बस ये भी 21,000 साल बहुत, इसलिए अभी अपने हाथ में धर्म है तो अपने को धर्म के माध्यम से इसमें जन्म ही लेना पड़े। 21,000 42,000 और 21,000 कहते नहीं, ये 21,000 फिर 21 और फिर लौट के फिर 21 जैसा और फिर 21 42,000। सैनिक चक्रवर्ती का सैनिक का अच्छा है कि 84,000 वर्ष तक नरक में रहेंगे, वहां से सीधे निकलेंगे तीर्थंकर हो जाएंगे, चौथा काल आ जाए। तो ऐसा उपाय करो जिससे कि अब चौथे काल में उत्पन्न हो गए, अब यहाँ से मर के बार बार ना पड़े यहाँ ये हो गया। अब जो है उत्सर्पणी का बात, ये तो अवसर्पणी का, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज कैसे होगा तो उसकी प्रक्रिया अलग है। हालांकि रहेगा बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा चेंज होगा। और विशेषताएं हैं पहले दूसरे तीसरे काल में, काल परिवर्तन कैसे, फिर हुंडाव सप्तमी में क्या क्या परिवर्तन होंगे, 14 बातें हैं। ये अवसर्पणी के 6 काल हैं क्योंकि डिक्रीज हो रहा। अब उत्सर्पणी के 6 लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, ऐसे कर वर्णन ज्यों का त्यों रहेगा। 84,000 की है पहली नरक की तो है, जगन्नाइव है और उत्कृष्ट तो एक सागर की है, तो उनका तो पटल तक निश्चित है कि किस पटल में है। 84,000 वर्ष की आयु है उनकी, क्योंकि पंचम काल की शुरुआत में मरण को प्राप्त हुए थे, तो पंचम काल पूरे 21,000 का, 28 का, फिर 76, फिर पंचम, जैसे 84,000 वर्ष की उनको आयु मिली। जैसे जैसे चौथा काल शुरू होगा और वो उत्पन्न होंगे पहले तीर्थ होगा, 84,000 वर्ष नरक है भावी तीर्थंकर। लेकिन क्या करें, उनने क्या किया था, उनने सर्प को मार करके मुनि महाराज के गले में डाल दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि सप्तम नरक की आयु बढ़ गई। फिर बाद में भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर के धर्म ग्रहण किया तो वो आयु कट गई उतनी, सम्यक दर्शन हो गया, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, सो इंक्रीमेंट मिल गया। इतना इंक्रीमेंट मिला कि पहले नरक में नरक तो जाना पड़ेगा, लेकिन पहले नरक में 84 सबसे कम आयु में शायद सम्यक दर्शन था, ये बाद में होगा, पहले उपसर्ग। अरे उपसर्ग के समय कैसे होगा, सप्तम नरक कैसे जाता है, शायद सम्यक दर्शन
छाई होने से तो नरक जाते ही,
लेकिन शायद पहले नरक आयु बांध ली फिर शायद सम्यक दर्शन हुआ तो ज्यादा बताएगा। एक ही कल्प वृक्ष थोड़ी बेटे, तेजांग नाम का कल्प वृक्ष मिट गया, बाकी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे और उनसे सामग्री धीरे धीरे मिलना खत्म हो गई, भोजन की सामग्री मिलना खत्म हो गई, लड़ाई भी हमारा वृक्ष इससे मिलती है भोजन। अपन सामान्य रूप से अगर ये समझें कि मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा होगा, एक एक वृक्ष एक आदमी की आवश्यकता है नहीं, 1,000 लोगों की आवश्यकता पूरी कर देता होगा एक वृक्ष, और कर भी सकता है अगर आवश्यकता कम हो गई तो, और आवश्यकता बहुत हो गई तो क्या करेंगे, कोई कल वृक्ष है। अगर आपको संतोषी, आप संतोषी प्राणी है तो एक वृक्ष से आपका पूरा जीवन की आवश्यकता पूरी हो सकती है, क्या उनको आप बताओ ना कितना सा खाना है, एक पेड़ के बराबर खाना है भोजन, आंवले के बराबर खाना मैक्सिमम, वो भी 3 दिन के बाद, 1 दिन, 4 दिन के बाद, कितना खाना उनको सब फैसिलिटी मिलती है। ये सब वर्णन
पूरे
पूरे 14 कुलकर को मनु,
टोटल
नहीं कुलकर को ही मनु,
कुलकर को मनु
सिनोनिक सिनोनिक सेनानी का मतलब हुआ कुलकर का दूसरा नाम क्या मनु, तो जैसे चौदह कुलकर है ऐसे चौदह को मनु कह लो ऐसा। अंतिम मनु कौन थे? वैदिक संस्कृति में मनु शब्द आता है इसलिए, और श्रवण संस्कृति में उन्हीं को कुलकर, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जिनको मनु कहा गया वही कुलकर है। पंचम काल के अंत ही वो एक मुनि रहेगा पंचम काल के अंत, एक मुनि एक आरिका एक श्रावक एक श्राविका, छठे काल में समाज धर्म ही रहेगा, धर्म ही नष्ट हो जाए छठे काल में, धर्म ही नष्ट हो जाए, उनके नष्ट होने पर भी धर्म नष्ट हो जाए, पंचम काल के अंत तक तो रहेंगे। आपको वहां भेजना थी मेरी भावना
जी,
आप मेरी भावना भेजना ठीक है उनका।
तीनों लड़कियों को भेजना चाहिए, हम लोग रात को नियम से पढ़ते
मेरे भाव में
जी सोने से पहले, तो सब अलग अलग हो गए तो सब लोग मिस करते हैं, मुझे तो याद है उन लोगों को याद नहीं है,
किससे उनको हेल्प मिलेगी और शायद मन बनेगा,
वहाँ पे वो जो भी दिखाएगी तो वो नॉविटी हो जाएगी वहाँ पे वैसे लोग।
जब भी आप किस चीज़ में आप